Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين. قيمتي راتي الحمد لله چل رہی ہیں آج کل اور ان راتوں میں ہم تقریبا اب مڈ میں پہنچ چکے ہیں یعنی ہمارے ہاں یہ 25ویں کی رات ہے. دو تاک راتیں گزر چکی اور دو باقی رہتی ہیں. ان راتوں میں اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں تو آسمان کوئی نیلے رنگ کا نہیں، ستارے کوئی پیلے رنگ کے نہیں، مگر اگر یہ لیلت القدر ہے تو اللہ تعالیٰ جس رات کو چاہے قدر والی رات بنا دے. آپ کسی اور رات میں بھی ساری رات جاگ کے بے شک عبادت کرتے رہیں، آپ وہ اجر نہیں پا سکتے جو لیلت القدر میں عبادت کر کے آپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنا دیا، قدر و منزلت والی بنا دیا. تو وہ جس وقت کو چاہے، جس رات کو چاہے، جس دن کو چاہے بڑا مرتبہ دے دے، ہزار گنا زیادہ اس کو بڑھا دے، اور یہ تو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے. کتنی بہتر؟ ہزار مہینوں سے کتنی زیادہ بہتر؟ 1 لاکھ گنا زیادہ بہتر ہے، 1 کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے، 10 ہزار گنا زیادہ بہتر ہے. کتنی بہتر؟ یعنی یہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے زیادہ کتنی، یہ نہیں بتایا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کے اندر وسعت ہو، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اس رات کو پا لینا. اور اس کے لیے ہمیں کتنی بھی محنت کرنی پڑے، کتنا بھی ہمیں مشقت اٹھانی پڑے، مگر اس رات کو ہم کھونا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس سے محروم رہنا نہیں افورڈ کر سکتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی برکت سے، اس رات سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. تو بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قدر و منزلت کیوں دی؟ یعنی کہ خود سے اس کے اندر کوئی خاصیت تھی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس وجہ سے یہ قدر والی رات بن گئی. یعنی ایک بابرکت کلام، ایک قدر و قیمت والا کلام، ایک بہت آنریبل کلام اس رات میں اترا، اور اس وجہ سے یہ رات بھی بابرکت بن گئی، کیونکہ وہ کلام بابرکت تھا. قرآن کریم جس چیز سے بھی اٹیچ ہو جائے اس چیز میں برکت بھر دیتا ہے، اس میں قدر و منزلت بھر دیتا ہے، اس میں عزت بھر دیتا ہے، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو. انسان کے دل میں بھی جب قرآن داخل ہو جاتا ہے تو وہ دل بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے بڑی پیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں رکھا جائے پھر وہ چمڑا آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی، نہ اس چمڑے کو اور نہ ہی قرآن کو. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اور آگ مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. مخلوق خالق کے کلام کو کیسے جلا سکتی ہے؟ تو حدیث کی جو شرح کی ہے محدثین نے، وہ یہ کیا ہے کہ چمڑے کا مطلب ہے انسان کا دل یا اس کا جسم، اور آگ سے مراد ہے جہنم کی آگ. तो जिस दिल में कुरान होगा उस जिस्म को भी जहन्नुम की आग नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह। कुरान करीम अल्लाह ताला का वो बाबरकत कलाम है, उसको देखना भी सवाब का काम है, उस पे भी नेकी है। उसको बगैर समझे भी कोई पढ़ता है तब भी सवाब मिलता है। अलिफ लाम मीम, इसको तो आज तक कोई भी नहीं समझ सका, ये तो राज है अल्लाह ताला के राजों में से, फिर भी इस पे सवाब मिलता है कि नहीं? अलिफ पे भी मिलता है, लाम पे भी और मीम पे भी, हालांकि समझ कुछ भी नहीं आया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। फायदा तो है, जाहिर है, सवाब है, मगर हाँ मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मकसद इसका सिर्फ सवाब पाना नहीं है, मकसद तो इसका इससे बहुत बड़ी चीज कमाना है इससे, और वो है जिंदगियों का रुख बदल देना, जिंदगियों को संवार लेना, अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेना, दिल में तकवा हासिल हो जाना। तो अगर इसका मकसद पूरा नहीं किया, सिर्फ अजर व सवाब ही कमाया, अजर व सवाब कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मकसद पूरा करना वो असल मतलूब है, उसी के लिए तो कुरान नाजिल हुआ, इसका पर्पज ही ये है। तो उस पर्पज को सामने रखते हुए इससे फायदा उठाया जाए कि जिंदगी इसके मुताबिक ढलने लग जाए, ये जिंदगी को मोल्ड कर दे, इसके आगे हम मोम बन जाएं, जैसे कुम्हार चिकने बर्तन को कैसे शेप देता है ना, इस तरह ये कुरान हमें शेप दे दे, जिधर जिधर को ढालता जाए हम उस तरफ ढलते जाएं, इसके आगे नरम पड़ जाएं, सख्त नहीं कि मैंने वो ही रहना है, कुरान चाहे पढ़ती जाऊं, आप कुरान मैं पढ़ती जा रही हूं, मैंने 3 खत्म कर लिए, किसी ने कहा मैंने 4 खत्म कर लिए, किसी ने कहा आपने कितने खत्म किए, बस एक ही खत्म किया आपने, यानी हमारी क्या दौड़ है कि किसने कितने खत्म किए वो जीत गया। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कि तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, गौर व फिक्र क्या करेंगे जब समझा ही नहीं, तो गौर करना तो बाद में आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान कहता है अल्लाह की लानत है झूठे पे, और उसके बाद बच्चा आके पूछता है अम्मा आंटी जो है वो बुला रही हैं आपको, तो अम्मा कहती जाओ उनसे कह दो कि मामा सो रही हैं। कुरान कहता है इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं, और माँ ये पढ़ के और उसके बाद वो शॉपिंग कर रही है और उसमें वो इसराफ है, वो इसराफ है कि खुदा की पनाह कि ईद की शॉपिंग हो रही है। कुरान पढ़ रही है लेकिन वो हलक से ही नहीं उतर रहा, क्योंकि हम समझते ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम दौरा कुरान भी अटेंड करके खुश हो जाते हैं कि बस एक रस्म पूरी हो गई, चलो जी मैंने दौरा कुरान कर लिया, सारा तर्जुमा सुन लिया, उसे हासिल क्या किया? कितना है जो अंदर गया है, क्या याद रहा है? उस दिन भी हमसे पूछा जाए जिस दिन हमने एक पारा सुन के तर्जुमे से खत्म किया होता है कि आपने आज अपने लिए क्या लिया, तो कुछ याद ही नहीं होता, बस बड़ा अच्छा था दौरा कुरान, या हमने दौरा कुरान कर लिया, दिल पे कितना असर हुआ, दिल टूट के दोबारा बना के नहीं, अपने आप को मोल्ड किया या नहीं, इसके लिए तो हम कभी नहीं पढ़ते। आप देखिए अल्लाह ताला ने सूरह हशर में फरमाया लो अनजलना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअ मुतसद्दिअ मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम नाजिल करते किसी पहाड़ पे भी तो तुम देखते वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता है, तुम्हारे दिल तो पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त हो गए जो कुरान के आगे बैठते हैं। कुरान हमारे सामने उतर रहा है, कुरान को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तरावी में दौरा कुरान में पढ़ पढ़ के भी हलकान हो रहे हैं, लेकिन कहीं हमारा दिल उससे कोई असर ले ही नहीं रहा। पहाड़ पे भी इतना असर हो जाता है जिसको हम बेजान समझते हैं, पहाड़ भी ऐसा है जिसको इतना हम सख्त समझते हैं, वो सख्त पहाड़ भी टूट के रेजा रेजा हो जाए, कुरान कहता है अगर इस कुरान को उस पे भी नाजिल कर दिया जाता, लेकिन हमारे आंसू ही नहीं निकलते, हमारा दिल उसी तरह सख्त रहता है। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। कितने ही लोग रमजान के अंदर दोहराए कुरान सुन भी रहे होते हैं, तरावियों में भी जा रहे होते हैं, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है चांद रात पे, क्या होता है ईद पे, क्या असर है कुरान का? रमजान खत्म होते ही क्या असर लेके उठते हैं? यही जो हम कर रहे होते हैं, जो रमजान से पहले था। अगर पहाड़ भी चूरा चूरा हो जाए, तो मेरा और आपका दिल क्या पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त हो गया? हमसे तो पहाड़ ही अच्छे हो गए, जिन्होंने कोई तो असर लिया। सोच लें कि फिर हम क्या करते हैं इसके बाद। क्या बात है कि कुरान मेरे ऊपर असर नहीं करता, समझ में ही नहीं आता। ये कुरान तो वो है जिसने सहाबा की जिंदगियां बदल दी थी। कहां वो काफिर थे, कहां वो मुशरिक थे, और कहां वो रदी अल्लाह अन्हुम व रदु अन बन गए। हजरत उमर को किस चीज ने बदला था? कुरान ही तो सुना था उन्होंने, चंद आयात ही तो सुनी थी, जिंदगी बदल गई, उमर फारूक बन गए। बाकी सहाबा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुनाते थे? कुरान ही तो था, फिर वो तो बदल जाते थे। और हमारा क्या हाल हो गया? शायद इसलिए कि हम कुरान को जब पकड़ते हैं तो हम उसको वो चीज नहीं समझते जैसे समझना चाहिए, यानी उसको अल्लाह की नेमत नहीं समझते, उसको रब का कलाम नहीं समझते। अगर हम ये समझते हैं कि मेरे खालिक का कलाम है, ये उसके अल्फाज हैं, तो कितनी मोहब्बत होनी चाहिए इस कुरान से, कितना ताल्लुक होना चाहिए। और अगर इसको नेमत समझते हैं, जिन चीजों को आप नेमत समझते हैं बताएं, उनसे महरूमी को कभी बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, बल्कि वो सोच भी आए तो इंसान कांप जाता है। औलाद है, इसको हम नेमत समझते हैं, घर बार को नेमत समझते हैं, जॉब्स को समझते हैं, रिस्क रोजी को समझते हैं, सेहत को समझते हैं, इन चीजों को हम नेमत समझते हैं। कभी इनके खोने का एहसास अगर दिल में आ जाए, अगर सोच भी आ जाए, तो उस तसव्वुर से भी हम कांप उठते हैं, क्या है ये मेरे से कहीं छिन ना जाए। और अगर हम कहते हैं ना कि कुरान नेमत है, तो कुरान को उठाए भी कितना अरसा गुजर जाता है, इसको पढ़ने समझने सीखने से हम महरूम रहते हैं, लेकिन कभी हमें रोना नहीं आता, कभी हम इस तसव्वुर से नहीं कांपते कि हाय मेरे घर में कुरान पढ़ा हुआ है और मेरे अंदर उतरा ही नहीं आज तक, मैं इससे महरूम हूं। ये फिर एहसास क्यों नहीं होता? इसका मतलब हम इसको वो वैल्यू नहीं देते, इसको नेमत नहीं समझते, हमने जाना ही नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। इसको अल्लाह ताला ने खुद नेमत करार दिया, इसीलिए फरमाया ना सूरह कहफ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। क्यों अल्हम्दुलिल्लाह तो किस चीज पे कहा जाता है? नेमत मिलने पे। अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह की हमद है इस पे कि उसने अपने बंदे के ऊपर इस कलाम पाक को नाजिल फरमाया। ये सूरह कहफ स्टार्ट ही इससे होती है, लेकिन हमने कभी ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नेमत ये मुझे मिल गई है, ये नेमत है। और क्या हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है? सब कहेंगे हाँ। तो जिससे मोहब्बत होती है उसका कलाम तो बहुत पसंद होता है, उससे बात करना हर चीज से ज्यादा महबूब होता है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि फिर उसका कलाम समझने की फुर्सत ही नहीं, हमें कभी कोशिश भी नहीं की, और मसरूफियात हमारी इतनी ज्यादा है कि अब कौन उसका कलाम समझने के लिए वक्त निकाले। महबूब का टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो कैसे तिल मिलाएंगे जब तक उसको देख ना ले। रात को भी उठ के टेक्स्ट मैसेज देख रहे होते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। इंसानों के मैसेजेस भी हमें कितने महबूब हैं, क्योंकि इंसान हमारे नजदीक बड़ी वैल्यू रखते हैं ना। रात को भी हमारे नोटिफिकेशन आए कि किसी का मैसेज आ जाए, तो हम बेचैन हो जाते हैं कि एक दफा जरा नजर मार ही लें किसने मैसेज भेजा, और कोई ज्यादा हमारा करीबी होगा तो खोल के भी देख लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम, ये उसका मैसेज है हमारे लिए, और हमने उसको कैसे इग्नोर किया हुआ कि फुर्सत ही नहीं कभी इसकी तरफ तवज्जो करने की। हम इसको ही बहुत बड़ा एहसान समझते हैं कि बस हमने जी पढ़ पढ़ के कुरान खत्म कर लिया रमजान में। इसको सीखना, इसको समझना, इस पे अमल करना, ये किसी और मखलूक के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। वो कोई और मखलूक उतरेगी, शायद फरिश्तों के लिए होता होगा, या फिर वो मस्जिदों में बैठने वाले मौलवियों के लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी है। इसके बावजूद हम सब अपने आप को समझते हैं हमसे ज्यादा अच्छा तो मुसलमान ही कोई नहीं, हम तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, चाहे एक लफ्ज कुरान का समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये हुदन लिल मुत्तकीन है, कुरान शुरू ही होता है तो फरमाया अल्लाह ताला ने हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत गाइडेंस है मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब अगर हम इससे हिदायत नहीं ले रहे तो हम तो मुत्तकी है ही नहीं, चाहे हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते रहें, बहुत अच्छे मुसलमान समझते रहें, ये खुशफहमी है सिर्फ। तो हम सब अपने गिरेबानों में झांके, ये ना हो कि कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिकायत कर रहे हो। क्योंकि सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वकाल रसूल, रसूल उस दिन फरमाएंगे या रब्बी, ए मेरा रब, इन्ना कौम इत्तखजू हादल कुरआन महजूरा, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, इसको निगलेक्ट किया हुआ था। वो खुद शिकायत करेंगे और अल्लाह ताला खुद फरमाता है अफ अभी हादल हदीसे हम तुम मुदहिनून, क्या इस कलाम के साथ ही तुम बेतनाई बरतते हो, इसको इग्नोर करते हो, इसको कुछ नहीं समझते, इसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला की शिकायत है, यही रह गई है चीज जिसको इग्नोर करना था तुमने, बाकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम सोचें हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो फरमाया वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूत पकड़ने को फरमाया, ये हब्लुल्लाह है, ये अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा इंसान के हाथ में और एक अल्लाह ताला के पास है। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला से कनेक्ट करती है। ये कुरान करीम मामूली बात नहीं है, हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं। घर घर पढ़ा हुआ कुरान तो ठीक है, पढ़ा रहे तो क्या है, बस ठीक है, बरकत के लिए है, पढ़ा है, खोलना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, रमजान के रमजान बस खोल लिया, सीखना ही नहीं, समझना ही नहीं, और जिंदगी गुजारना इसके मुताबिक, तो जो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, इरादा तक नहीं है कि कभी मैंने अपनी जिंदगी को ढालना है उसके कुरान के मुताबिक, कभी दुआओं में भी नहीं है कि अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कुरान के मुताबिक, जो तुझे पसंद हो वो जिंदगी दे दे, कभी ये हम दुआ करते हैं, कभी हमारी ये फिक्र होती है कि ये जिंदगी मेरी कितनी कुरान से दूर है, कुरान कुछ कह रहा है मैं कुछ कर रही हूं, फिर भी मैं और आप समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के बड़े ही महबूब हैं, बड़े चहीते लोग हैं, हमारे से ज्यादा कौन महबूब हो सकता है, और हमारे से ज्यादा मुत्तकी भी कोई नहीं हो सकता, आपको क्या पता मैं कितनी नेक हूं। अल्लाह अकबर। तो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना, अपने आप को हम देखें मेरा कुरान से ताल्लुक कितना है, कैसा है, ये रातें जो हम मना रहे हैं आजकल, जिनको हम बड़ा समझते हैं, जिनकी अजमत को हम समझते हैं, इन रातों में भी एक रात, वो जो सबसे कीमती रात लैलतुल कद्र, बेस्ट नाइट ऑफ द ईयर है, वो क्वीन ऑफ ऑल नाइट्स है, उसकी भी कद्र मंजिलत सिर्फ इस कुरान की वजह से है, और इसी कुरान को हमने इग्नोर किया हुआ। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र हर एक की जुबान पे है, लेकिन वो रात किस चीज की वजह से इतनी अजमत वाली बनी, इसका अंदाजा नहीं है। तो रमजान वो महीना है जिसमें इंसान नेकियों के इरादे बांधे, नियतें करे कि भाई मैंने रमजान के बाद अब क्या चीजें हैं जो मैंने कंटिन्यू करनी है, कौन सी चीजें हैं जो मैंने फिक्स करनी है। कुछ तो रमजान से लेके निकले ना, हम इतनी हम एक एक्सरसाइज से गुजरे हैं, एक बूट कैंप से गुजरे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदों को भी जा रहे हैं, जो अपनी नेकी सदका खैरात कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, यानी नेकियां करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट नेक्स्ट देन आफ्टर रमजान, क्या चीज है जिसको मैंने लेकर जाना है, कंटिन्यू करना है। तो नियत बांध लें, इरादे कर लें कि इस रमजान के बाद भी मैंने कुरान करीम को छोड़ना नहीं है, मैंने इसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है, और अब के मैंने इरादा करना है कि अगले रमजान आने तक मैंने इस कुरान को सीखने का सफर जारी रखना है और सारी जिंदगी जारी रखना है। और मैं अब से इरादा करती हूँ अगले रमजान तक मुझे कुछ ना कुछ कुरान समझ आना चाहिए, कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में चेंज आनी चाहिए इस कुरान के मुताबिक। किसी के लिए नहीं, इसलिए कि कुरान ने ये तालीम दी है, उसके मुताबिक मुझे अपने आप को ढालना। तो इन नेकियों के इरादे बांधें, इन नेकियों की हिर्स रखें, इनका शौक रखें। ये दिन है, आप इरादा भी करेंगे तो इस इरादे के ऊपर भी आपको अजर वैसे भी रमजान के अलावा भी वैसे भी मिलता है, लेकिन रमजान में सोचें कितना मिलेगा। और ये झूठा इरादा नहीं होना चाहिए, ये पक्का इरादा होना चाहिए। और आपके सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने शेयर किया, आज ही इसको स्टेप को उठा लीजिए, रजिस्टर करें। फ्री है ये कोर्सेस, समझे कुरान करीम को ये क्या कह रहा है। कुछ आपसे नहीं लेना देना हमें, बस आए इसको सीखें और अपनी अपनी जिंदगियां संवार लें इस रमजान में। सिर्फ नियत करके दिल में और उसके बाद भूल नहीं जाना, जब आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको याद रहेगा और आप इससे जुड़ जाएंगे, और यही साबित करेगा कि वाकई आप अमली कदम उठाने के लिए तैयार हो गए, आपने स्टेप भी फॉरवर्ड रखा है, आपने एक कदम भी उठाया है, सिर्फ सोचा नहीं है बल्कि अमली कदम उठाना जरूरी है इससे पहले कि रमजान खत्म हो जाए और हम भूल ही जाएंगे कभी हमने कोई इरादे भी किए थे, कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे अल्लाह ताला से। तो अपने साथ खुद हम भलाई करें, जो कुरान के साथ जुड़ता है वो अपना भला करता है, कुरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह का कलाम है और ये ऐसे ही बेमिसाल और बेमिसल है जैसे अल्लाह ताला की जात बेमिसाल और बेमिसल है, इसी तरह उसका कलाम है। इसकी कोई ही और मिसाल नहीं दी जा सकती, कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती, जैसे अल्लाह की जात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके कलाम का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस कलाम पाक को जिसको आजकल शौक और जौक से आप पढ़ रहे हैं, अब नियत करके इसके साथ जुड़ भी जाइए कि ये जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये सिर्फ रमजान का साथी ना हो, जिंदगी का साथी बने और कब्र का साथी बने और हशर में सिफारशी बने। आपको पता है दो चीजें हैं जो वहां पे कयामत के दिन सिफारिश करेंगी, रोजा और कुरान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान वो सिफारशी है जिसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी, अल्लाह ताला जरूर उसकी सिफारिश कबूल करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि कुरान आपका साथी उस दिन बने और कुरान आपका सिफारशी उस दिन बने और अल्लाह ताला के सामने आपकी सिफारिश करके और आपको जहन्नुम से बचा के जन्नत की तरफ ले जाए और आपके लिए वकील बन जाए और आपके लिए अल्लाह ताला के सामने झगड़ा करे जब तक आपको जन्नत तक ना पहुंचा दे? क्या ये नहीं चाहते? क्या आप ये नहीं चाहते कि कब्र में कुरान आपके लिए नूर बन जाए और कब्र के अजाब से बचने का जरिया बन जाए? तो अगर आप इस तरह की तमन्नाएं रखते हैं तो आज अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है। मौके रोज नहीं मिलते, ये कुरान रोज दिल पे दस्तक नहीं करेगा, ये आज दस्तक कर रहा है, अपने दिल के दरवाजे इसके लिए खोल दीजिए, इसको कबूल कर लीजिए, ये आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, नॉक कर रहा है। अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो ये अंदर आ जाएगा, अगर नहीं खोलेंगे तो ये वापस मुड़ जाएगा। और अल्लाह ताला बड़ा गयूर है, जो उसके कलाम को नहीं चाहता अल्लाह ताला जबरदस्ती उसको नहीं देता, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं, वो बेनियाज है, उसको मेरी और आपकी कोई जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। तो इसे बेएतनाई ना बरते, इसको मामूली ना समझे और इस आयत के मुताबिक ना हो जाएं, आफा बिहादल हदीसी अंतुमुद्दीनों, यही कलाम रह गया जिससे तुमने बेतनाई बरतनी है, सुस्ती बरतनी है, रुख मोड़ना है, इग्नोर करना है जिसको। तो इस आयत के मुताबिक ना बने, बल्कि हम अपने आप को उन लोगों में शामिल करें जो कि कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, जैसे सूरह अनफाल में अल्लाह तआला ने फरमाया, जब कुरान की आयत सुनते हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। हो, जो मोमिन होते हैं उनके तो आंसू बहने लगते हैं कुरान को सुन के, उनकी जिल्दें नरम पड़ जाती हैं खशियत इलाही से। तो अपने दिल को पहाड़ों से ज्यादा सख्त ना कीजिए, जब पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए तो अपने दिल को ऐसा बनाएं कि नरम हो, और बात को अपने अंदर समोने वाला हो। अल्लाह ताला हमारे से कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन बातों को हमारे हक में हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ ना हुज्जत बनाए कि कयामत के दिन ये कहा जाए तुम्हें दावत दी गई थी लेकिन तुमने नहीं माने। आज भी अगर मेरे पास बहाने हैं और फ्यूचर के लिए मैंने इसको उठा रखा है, हाँ कर लूंगी कभी, तो वो कभी जो है शायद कभी ना आए, और कर लूंगी लेकिन अभी नहीं कल, तो वो शायद कल कभी भी ना आए, आज और इसी वक्त और इन रातों में जो इरादा करेगा तो पता नहीं कितना बड़ा अजर उसके हिस्से में लिख लिया जाएगा, क्योंकि इस इन रातों की हर नेकी कई गुना बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला उन लोगों से कबूल करे जो आज लब्बाई कहने वाले और आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेकियों की रातें, कबूलियत की रातें, दुआओं की रातें, जिक्र की रातें, अजर कमाने की रातें और तकदीर बदल देने वाली रातें। अल्लाह ताला इनकी इबादत हमसे कबूल करे, और इन रातों में अल्लाह ताला हमें जो भी हम उससे मांग रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा के और सब हमें अता फरमा दे।